भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश के 80 करोड़ लोगों को अगले 6 महीने तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इस राशन को पिछले 3 महीने से मुफ्त में दिया जा रहा था, उसी कड़ी को उन्होंने 6 महीने और के लिए बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि त्योहार आ रहे हैं, बरसात का मौसम है, ऐसे में रोजगार भारत में कम रहते हैं, इसलिए लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। अगर इसे आंकड़ों में समझा जाए तो दुनिया की एक बहुत बड़ी वेलफेयर स्कीम इसको बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं निवेश मंथन के एडिटर राजीव रंजन जी।
जी धन्यवाद।
सर, इस घोषणा को किस अर्थ में समझा जाए प्रधानमंत्री मोदी की, भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि और गरीबों को मदद पहुंचाने, इन दोनों दृष्टियों से अगर आप हमें बता पाए।
देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसका मतलब यह है कि अभी भारत की एक बड़ी आबादी जो पिछले कुछ महीनों में विस्थापित हुई है, विस्थापित इस अर्थ में कि वो रोजी रोजगार के लिए अपने गृह प्रांत से, अपने होम स्टेट से निकल करके दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाते थे, वहाँ पर काम धंधा करते थे, और उन्हें कोविड की परिस्थितियों के कारण अपने गृह राज्य वापस लौटना पड़ा। तो इस कारण उनके सामने अभी जीविका का संकट है। अभी आज की तारीख में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जिनके पास साथ में कोई काम नहीं है और इसके चलते उनके सामने कमाई का कोई साधन नहीं है। तो इसलिए एक फूड सिक्योरिटी प्लान, आप इसको कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या जिसके हाथ में आज की तारीख में कोई काम ना हो, कोई आजीविका का साधन ना हो, वो अपने गांव घर लौट गए हैं, तो उनके सामने कम से कम ये संकट ना हो कि 2 जून की रोटी जो है उनको कैसे मिलेगी। कम से कम इस चिंता से वो मुक्त रहेंगे तो फिर आगे वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नए रास्ते खोल सकते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5 किलो गेहूं या चावल दे दीजिए, 1 किलो चना दे दीजिए, उससे किसी की ज़िंदगी नहीं चल जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बेसिक मिनिमम ज़रूरत जो है कि कम से कम कोई भूख से न मरे, कोई खाने की कमी की वजह से परेशान ना हो, कम से कम इतनी चीज़ें आपने सुनिश्चित कर दी। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ यही किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया हो, और भी तमाम चीज़ें चल रही हैं। जैसे मनरेगा योजना है, उसके तहत जो लोगों को दैनिक मजदूरी मिलती है उस मजदूरी को भी बढ़ाया गया और ज़्यादा लोगों को काम देने की बात भी कही गई, इसके तहत आवंटन भी बढ़ा। तो इस तरह के तमाम प्रयास हो रहे हैं कि जो लोग वापस लौटे हैं उनको आजीविका के संकट से और कम से कम अन्न के संकट से न जूझना पड़े।
राजीव, अगर 80 करोड़ लोगों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद बताया कि अमेरिका की जो जनसंख्या है उसका 2.5 गुना, ब्रिटेन से 12 गुना, यूरोपियन यूनियन की आबादी से 2 गुना, और ऑस्ट्रेलिया के टर्म में बात करें तो 20 गुना ज्यादा लोग, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से 20 गुना ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था है। तो मुफ्त अनाज देना बहुत ही अच्छा चीज है, लोग भूख से परेशान हो सकते हैं, मगर इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत इसको कितना अफोर्ड कर सकता है उस टर्म्स में, अगर आप बता पाए? 1,50,000,000,000 रुपया का ये कुल हो जाता है।
जी, दरअसल जब यह संकट आरंभ हुआ था कोरोना महामारी का, उस समय ही केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए की एक कुल योजना सामने रखी थी, और उसी में एक हिस्सा यह था कि 3 महीने तक लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, 80 करोड़ लोगों को। अब ये उसी योजना का एक विस्तार है। तो 1,70,000 करोड़ रुपए की जो योजना थी उसमें कई और सारी चीज़ें भी थीं। उसमें जनधन खाते में लोगों के पैसे डालने की बात कही गई थी, वो डाला भी गया, और उसका एक हिस्सा ये भी था कि 3 महीने तक लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाए, 5 किलो गेहूँ दिया जाए, 1 किलो चना दिया जाए हर महीने के हिसाब से। अब ये इसी योजना को, मुफ्त अन्न की योजना को, अगले 6 महीने तक विस्तार दे दिया गया है, नवंबर तक के लिए विस्तार दिया गया। तो सरकार ने ये सामने रखा है कि 90,000 करोड़ रुपए कुल मिलाकर के इस योजना पर खर्च होंगे, और यदि जैसा आपने कहा 1,50,000 करोड़ रुपए, उसमें यह है कि अगर उससे पहले जो 3 महीने में जो खर्च हुआ है उसको भी जोड़ लीजिए तो ये कुल मिलाकर के करीब 1,50,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो ये तो रही आंकड़ों की बात, और इसके अलावा सरकार ने 20,90,97,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन योजना भी रखी। उसमें जरूर है कि हाँ, सारी चीज़ें जो हैं वो केंद्र सरकार के खजाने से ये पैसा नहीं निकल रहा है, बहुत सारे उसमें लिक्विडिटी मेजर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आप बैंकिंग सिस्टम से कंपनियों तक, एमएसएमई तक, जो छोटी घरेलू इकाइयाँ होती है उनके हाथ में आप पैसा पहुँचाने का इंतजाम करते हैं। वो पैसा दान नहीं होता, वो पैसा ग्रांट नहीं होता, वो पैसा कर्ज के रूप में होता है, लिक्विडिटी के रूप में आप बाज़ार में उपलब्ध कराते हैं वो पैसा, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। कुछ योजनाएं उसमें भी हैं जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के खजाने से है, राहत के रूप में है। तो उन सब चीज़ों का एक मिश्रण है जो कुल मिलाकर के लगभग आप कह सकते हैं 21 लाख करोड़ रुपए की योजना है वो। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने जो प्रोत्साहन के कदम उठाए हैं और जो राहत के कदम उठाए हैं, वो दोनों ही हम उनकी तुलना कर सकते हैं जो विकसित देशों में हुआ है। अगर आप सीधे सीधे डॉलर और रुपए में देखने लगेंगे तो आपको लगेगा कि शायद भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति बहुत कम खर्च किया है, लेकिन यदि आप परचेजिंग पावर के रूप में देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, लोगों को पर्याप्त रूप से राहत दी गई है।
एक अंतिम चीज, अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इस परियोजना की घोषणा के बाद जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि ये मांग वो बहुत दिनों से कर रहे थे कि इस तरह की घोषणा की जाए, उनकी मांग पूरी होती है, मगर इस मांग को पूरा करते हुए जो नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया उसमें जो बहुत सारे त्योहारों के नाम लिए, मगर उन्होंने कहा कि छठ भी था, होली, दिवाली भी था, दशहरा भी था, मगर उसने ईद का नाम नहीं लिया, इसका जवाब आप किस तरह से देते हैं?
देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजनीति के घेरे में हैं। अब उन्होंने एक पर्व का नाम नहीं लिया, कांग्रेस ने तो ये भी कहा बार बार बिहार का नाम लिया, छठ का नाम लिया, तो इसका मतलब है कि ये सारी योजना सिर्फ बिहार को ध्यान में रख करके, चूंकि नवंबर तक विस्तार दिया गया है और लगभग उसी समय बिहार में चुनाव होने की बात कही जा रही है, जो तय कार्यक्रम के अनुसार यदि बिहार में चुनाव हो तो लगभग उसी समय होगा, तो कांग्रेस ने तुरंत ये भी आरोप लगा दिया जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कि ये सारी घोषणा जो है, ये जो विस्तार देने की नवंबर तक बात हुई, ये पूरी तरह से बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके ही किया गया है। लेकिन इस योजना का फायदा 80 करोड़ लोगों को मिलने वाला है, और 80 करोड़ जो है वो बिहार की कुल आबादी का मुझे लगता है कि कम से कम 6 गुना है। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि नहीं, सिर्फ बिहार की आबादी को ध्यान, बिहार की चुनाव को ध्यान में रख करके 80 करोड़ लोगों को राहत दे दी गई, अगर ऐसा होता तो फिर सिर्फ बिहार के लिए कोई खास योजना रख दी जाती। तो राजनीति के पहलू देखे जाते हैं उसमें, प्रधानमंत्री ने सिर्फ छठ का नाम नहीं लिया, उन्होंने बहुत सारे पर्वों का नाम लिया जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे उन्होंने गुड़ी पड़वा की बात की, दिवाली सारे देश का त्यौहार है। तो अब उसमें यदि हम राजनीति खोजने चलेंगे तो हमें राजनीति के बिंदु मिलते रहेंगे, यदि हम इसे सिर्फ एक ऐसी घोषणा के रूप में देखेंगे जिससे देश की बहुत बड़ी आबादी को फायदा मिलने वाला है तो उस रूप में हम देख सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के लिए हमारे लिए मतलब यह है कि देश की बहुत बड़ी आबादी के सामने कम से कम फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो रही है, और इतना सुनिश्चित होने से देश के अंदर जो बड़ी आबादी है उसके अंदर कोई बेचैनी नहीं होगी, उसे महसूस होगा कि सरकार उसका ध्यान रख रही है। और साथ में यह ध्यान दीजिए कि चूंकि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, शायद 2 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड वाली जो संकल्पना है वो पूरी हो जाएगी, और इसका मतलब ये है कि बिहार से चला हुआ व्यक्ति यदि कल को राजस्थान में लौटता है अपने काम के लिए या मुंबई लौटता है अपने काम के लिए, तो उसके पास जो बिहार का राशन कार्ड होगा वो राजस्थान के जयपुर में या महाराष्ट्र के मुंबई में भी काम करेगा, वो वहाँ भी राशन ले पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगली बार जब वो अपने घर से कहीं काम के लिए दूसरे राज्य में जाएगा तो उसके सामने मन में ये चिंता नहीं रहेगी कि ठीक है, अगर मुझे काम मिलने में थोड़ी देरी हुई तो मैं खाऊंगा कैसे।